والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ڈسکرپشن آپ نے حدیث میں سن لی کہ مومنوں کا اکرام کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو تھا انسان کے ساتھ جو قبر میں جانے اور ابھی تک کے معاملات کا۔ اب اگلی آیت میں آیت 43 سے کچھ چیزیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اس آیت کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد کریں گے۔ ونزانا، اور ہم کھینچ دیں گے۔ نزا کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ ونازیاتی غرقا، کھینچ کھینچ کر روحیں نکالی جائیں گی جو جسموں سے، اسی کی طرف اشارہ ہے، کھینچ دیں گے۔ اور یہ جو اردو میں نزا ہوتا ہے نا، نزا جھگڑے کو کہتے ہیں، کھینچا تانی کے لفظوں میں لے لیجئے، یعنی ہم ان کے دلوں سے کھینچ لیں گے۔ کیا کھینچ لیں گے؟ ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن، غل میں سے۔ غل کہتے ہیں دلی عداوت کو، دل میں چھپائی ہوئی دشمنی۔ پیچھے آپ کو میں نے تذکرہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، سورۃ آل عمران میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، ما کان للنبی یا غل، تو وہاں کہتے کہ غل کیا ہے؟ مال غنیمت کی چوری، اجتماعی مال میں سے کچھ چرا لینا۔ اور غل کیا ہے؟ دل کے اندر کا غل، بغض، انمیٹی کہہ لیں انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں تو۔ دلوں میں جو کھوٹ کھپٹ ہوگا نا، وہ بھی نکال لیں گے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں ان کے اندر کوئی خرابی کمی بیشی نہ ہو۔ اہل ایمان بھی آخر انسان ہے، زندگی میں معاملات کے اندر انسان کو کبھی کبھی ایک دوسرے سے گلہ شکوا ہو جاتا ہے، کبھی آپ دیکھیے دوستوں میں ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا لگتا، جتنی دنیا داری بڑھتی ہے سامنے بیٹھتے ہیں، ٹی پارٹیز، کافی پارٹیز اور کمیٹی پارٹیز، اور پیچھے جا کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، امیر اور مامور میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دینی جماعتوں کے دو بڑوں میں آپس میں کہیں نہ کہیں خرابی آتی ہے، کوئی ایک دیندار دوسرے کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو جو گلے شکوے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گلے شکووں کو جا کر کہاں ختم کریں گے؟ جنت سے پہلے۔ پل صراط کا آخری کنارہ ہے جس کو قنطرہ کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ کھپٹ دور کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت روایت آتی ہے، میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، کہ پل صراط سلامتی سے عبور کرنے والے اہل ایمان کو قنطرہ نام کی جگہ پر روک لیا جائے گا، ان کی باہمی ناراضگیاں اور گلے شکوے دور کیے جائیں گے، تب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ جنت میں شیر و شکر ہو کر رہیں۔ یہ جو آپ کی بکس ہے نا کورس میں، اقبال کیلانی سیریز کی، اس کی کتاب القیامہ، اس کے پیج 258 پر یہ روایت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ بک آپ بھی ضرور پڑھیے گا، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ ہو سکے تو کم از کم سننا شروع کر دیجئے گا، کیونکہ بہت کچھ بندے کو سٹیپ بائی سٹیپ سے پتہ چلتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ کہ جنت میں جانے سے پہلے دلوں کے کینے بوس ختم کیے جائیں گے۔ روایت کا حوالہ نوٹ کر لیں، بخاری کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پل صراط پار کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیا جائے گا، دنیا میں انہوں نے جو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا پتہ چلا؟ میں اس بات کو پڑھتی ہوں نا تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دلہن کہیں جاتی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ پورے گھر کو بھی سجایا جاتا ہے، اس کا کمرہ سجایا جاتا ہے، کپڑے بھی نئے سب، اس کے ساتھ ساتھ دلہن کو بھی سجایا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن نے جنت میں بھی بالکل پروٹوکول سے جانا ہے، تو جنت اس کے لیے سجائی ہوئی ہے، لیکن صاحب جنت کو سجائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ میک اپ سو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے دل کو دھو رہا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جنت کے بالکل باہر ایک نہر حیوان ہے، جنتیوں کو اس میں ڈبکی دی جائے گی، تو وہ جب اس میں سے نکلیں گے تو فریش خوبصورت ہوں گے۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے بال سمر جائیں گے، ان کی آنکھوں میں سرما ڈل جائے گا، یعنی ڈیکوریٹ کر کے۔ اور طویل روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جنتیوں کو جب اس طرح کے معاملات میں پاک کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ہی وہ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے، واللہ ہی اس سے بھی زیادہ آسانی سے، جتنی آسانی سے تم اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے ہو، جنتی جنت میں اپنے گھر کی طرف چل پڑے گا، پوچھنا نہیں پڑے گا، کوئی جی پی ایس شی پی ایس نہیں ہوں گے وہاں۔ कोई टॉम टॉम की जरूरत नहीं, खुद ब खुद कदम लग जाएंगे। सवाल पैदा होता है कि पता कैसे चलेगा कि मेरा घर किस कम्युनिटी में है। जजाम बीमा मिलो, मुझे ऐसे लगता है जन्नत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पहले बड़े बड़े कत्बे लगे होंगे, ये रोजेदारों का यानी आप कह लें कि ब्लॉक है, ये सबके वालों का है, ये फीस भी लीला अलग है। हर बंदे को अपने अमल तो खुद भी पता है, बल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वल कामाजीरा, खुद को तो पता है ना मैं कितने पानी में। तो जन्नत में जाते इंसान अपनी असल के मुताबिक खुद ब खुद उस ब्लॉक में जाएगा। और हदीस में आता है कि जन्नती जो ही अपने खेमे में दाखिल होगा वहां उसकी बीवी उसकी मुंतजर है, उसको वो पाएगा। और वो खेमा इतना बड़ा है कि उसके एक कोने में वो बैठा है, और अगर उसकी दूसरी बीवी मोती के दूसरे कोने पे है तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। हमने उस जन्नत को समझा ही नहीं है, तभी तो इस दुनिया को जन्नत बनाने की ख्वाहिशों में। ये मट्टी के घर हों जिनके मान पे हम इतना जीते हैं, इन्हीं में जीते हैं, इन्हीं में मरते हैं। हम इनसे कितनी नेकियां और कमा सकते हैं लेकिन हम नहीं कमाते, क्योंकि हमें वो जन्नत के घर अभी याद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं हम दिलों के कोट कपट दूर कर देंगे। इसी तरह सूरह हिजर में हम पढ़ेंगे व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन, हम उनके दिलों का सारा गिल खींच लेंगे और वो भाई भाई बन जाएंगे। अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, वो बड़ी खूबसूरत मसहरियों पे एक दूसरे के सामने सामने होंगे। वरना तो सास और बहू दोनों एक ही जन्नत में चली गई तो मूड ही खराब होगा, वहां मूड ठीक रहेगा। है सास बहू का आपस में खटपट, वहां खुश हो जाएंगे, पहले ही दिल साफ हो जाएंगे। ये जो उसको हमारी जुबान में कहते हैं ना कि कहा सुना माफ कराना, ये कहा सुना माफ हो रहा है जन्नत के दरवाजे पे। अल्लाह अकबर। इसी तरह हमें एक दुआ सिखाई गई सूरत हशर में, मांगा करें। इंशाल्लाह आपको के फाइनली करीब में ये दुआ याद करवाएंगे कि रब्बना अग़फिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ए अल्लाह हमें भी माफ कर दे और हमारे उन भाइयों को भी माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में फौत हो गए, और हमारे दिलों में मोमिनों के लिए कीना न रख। कहते हैं ना कि दिल साफ करने दुआएं मांगे, कि अल्लाह मेरा दिल पाक रखना, और अल्लाह बेशक तू रऊफुर रहीम है। तो ये दुआएं इंसान को बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल आता है इन आयात के बारे में, कहते हैं कि इस आयत में मेरे और मुआविया के बारे में अल्लाह ने बात की है। सियासी जंग हो गई थी इन दोनों के बीच में। इसी तरह हजरत अलहा और जुबैर का भी नाम आता है। अमीर चंद साहबा की जो बातें ना जो करबला और दूसरे नामों से आप सुनते हैं, ये कहते हैं ये आयत हमारी है कि हमारे दिल वहां जाके साफ हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक दूसरे के मुखालिफ है लेकिन जहन्नुमी नहीं समझते दूसरे को। हजरत अली का जब हजरत मुआविया से मामला चल रहा था तो एक काफिर बादशाह ने खत लिखा गालिबन हजरत अली को या हजरत मुआविया को, जिसको को याद नहीं, और उनको दूसरे साथी के खिलाफ किया, कहा कोई बात नहीं आओ तुम, हम तुम्हें अपनी बादशाहत में लेते हैं, हमारे साथ मिलो और मुआविया पे हमला करो। तो हजरत अली थे अगर वो तो कहने लगे कि खबरदार ये हमारा आपस का मामला है, अगर तुमने मुआविया पे चढ़ाई की तो मैं सबसे पहला होगा जो तुम्हारी फौजों का मुकाबला करूंगा। ये था उस दौर के लोगों का हाल। हम तो आज एक दीन से दूसरे दीन वाले की बात नहीं सुनना चाहते ना, मत सुनो और ये नहीं करो वो नहीं करो, इतनी नेकी अपनी जाया कर देते सिर्फ इस खौफ के तहत कि दूसरा नाराज हो जाएगा। वहां देखिए कि सहाबा एक दूसरे के बारे में कितनी खूबसूरत बातें करते हुए दिखते हैं, और तजरी मिन तहतिहिम अलअन्हार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो बाला खाने अब क्लाइमेक्स है। आप अपने आप को महसूस करें और आप जाएंगे वहां, क्योंकि आप मन और अमिल सालेहात की शर्त लगा लें। जिस तरह देखिए ये कोई सियासी वादे नहीं है कि बुरे नहीं होने, और ना ये किसी मन चले की लंबी चौड़ी कहानी है कि ये होगा वो होगा और आपको ऐसी टरखाया हुआ। वल्लाही ये दुनिया की सबसे सच्ची किताब में कायनात की सबसे सच्ची हस्ती का बयान है कि जब जन्नती जन्नत के दरवाजों पे खड़े होंगे तो वकालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, फिर वो वहां कहेंगे सारी तारीफें उस जात की हैं जिसने हमें यहां तक पहुंचा दिया, जिसने जन्नत का रास्ता दिखा दिया, जिसने सबीलुल जन्ना पे चला दिया, जिसने सुबुल सलाम दिखा दिए, जिसने दिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ कबूल कर ली। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हम कहां थे कि राह पाते, लौलान हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हिदायत ना देता। लकद जात रसुल रब्बिना बिल हक, और बेशक आ गए थे हमारे रब के रसूल हक के साथ। ये कौन कहेगा जिसको दुनिया में शुक्र की आदत होगी। देखिए साथ अल्हम्दुलिल्लाह और साथ ही कह दिया बिमा कुन तुम तामलून, खूबसूरत इम्तिजाज है, बेस्ट कॉम्बिनेशन कि जन्नत मिलेगी शुक्र गुजारों को और खूबसूरत अमल करने वालों को। बंदे अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं कि जन्नत इसलिए मिली कि अल्लाह ने दी, और अल्लाह बंदे की तरफ निस्बत कर रहे हैं, नहीं नहीं ये तुम्हारे अमल है। समझ रहे फर्क? बंदा क्या कह रहा है, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं तुम अपने अमलों से आए हो। अल्लाह हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह का कलाम है। और जो नशुक्र रोने वाले थोड़े दिले हर वक्त नाराज अल्लाह से भी बंदों से भी, वो ये कह सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह? देखिए यहाँ एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि जन्नत में जाके कोई एकदम नई शख्सियत नहीं बन जाएगी मेरी आपकी, पर्सनैलिटी यही रहेगी। जी बिल्कुल, आज शिकवे करते हैं वहां भी करते दिखेंगे, ये बाहर जाके अल्लाह साफ करके भेजेगा जन्नत में, वह जन्नत में जाके भी शिकवा करना, अल्लाह अच्छा तो घर है मेरा लेकिन वो मेरी बहन का घर ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। हदीस में आता है कि जन्नत में जो जन्नती ना उनमें से एक जन्नती को दूसरे का ऐसे दिखता है जैसे जन्नत के 100 दर्जे हैं, तो किस तरह दिखते हैं, जैसे तुम्हें जमीन पे सितारे दिखते हैं, हम ऊपर देखते हैं तो सितारे हैं ना, तो एक दर्जे वाला इधर खड़ा है, दूसरा उसको ऐसे लगेगा उस तरह, दूसरे को उससे तीसरा यदि ऐसे लगेंगे कि हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन किसी के दिल में मलाल नहीं होगा कि अच्छा इसका तो इतना बड़ा घर है तो मेरा क्यों नहीं। दुनिया में भी अपने दिल को गनी कर ले, ऐसे ही हो जाएंगे लोगों के बड़े घर आपको एक आंख नहीं भाएंगे, आपको अपना एक कमरे का घर अच्छा लगेगा क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, इसलिए कि उसका हिसाब आसान है। हम दुनिया की चीजों में खो खो के पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला कहते दिलकुमुल जन्ना, तब इनको पुकारा जाएगा ये है तुम्हारी जन्नत, उरिस तुमोहा बिमा कुंतुम तअमलून, तुम इसके वारिस बना दिए गए अपने इन आमाल की वजह से जो तुम करते थे। ये है बंदे की मुकामे अब्दियत का आखिरी नुक्ता। बंदे की मुकामे अब्दियत इस बात का तकाजा करती है कि वो अल्लाह की नेमतों को पाकर सरापे शुक्र बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कि अल्लाह मैं कहाँ इस लायक थी, मेरे अमल कहाँ ऐसे थे, मैं अपनी कोशिश की बुनियाद पर कभी इसकी मुस्तहिक नहीं हो सकती थी, ये सिर्फ तेरा फजल और करम है, ये तेरी अता तेरी देन है। जबकि अल्लाह बंदे की हुस्न नीयत उसके अमाले साले की कदर अफजाई फरमाते हुए कहते नहीं मेरे बंदे भी माँ कुन तुम तामल, तुम भी तो बहुत करते थे ना, तुमने भी तो कोई कमी नहीं की। आप कहते अल्लाह हक तो अदा नहीं होता था, तो अल्लाह कहता मैंने उसके बदले में तो दी नहीं, मैं तो तेरी कोशिश को देखता हूँ, तेरी मेहनत का इनाम है, तेरी कोशिशों का समरा, तेरी इसार का सिला, तेरी कुर्बानियों तेरी हिजरतों तेरे खलूस नीयत का सिला, तूने हक का रास्ता चुना, उसमें कितनी मुश्किलें आई तू जम गया, मैंने तुझे नुकसान में डाला तूने खुशी से बर्दाश्त किया, चारों तरफ बातिल था खुशी से तू उसका मुकाबला करने में तकलीफें सहता रहा, सारा खानदान मुआशरा तेरे खिलाफ हो गया, तू खड़ा रहा चलता रहा। अल्लाह कहते मैं तुम्हारी कदर करूंगा, आज ये काम करूंगा कि तुम्हें इस जन्नत में दाखिल कर दूंगा। देखिए एक जुमला लिखिए, लोग कहते हैं हमारी नमाजों से क्या होगा, अल्लाह ने जन्नत खुद ही देनी है, ऐसे ही कहते हैं ना, हमारी नेकियों से जन्नत थोड़ी मिलनी है। तो लिखिएगा कि जन्नत हमारी नमाजों से नहीं मिलनी, हकीकत हमारी नमाजें इस काबिल नहीं है कि उसके बदले में जन्नत खरीदे, उसके बदले में तो दुनिया में घर नहीं आता। जो हमारी नमाजों के हालात हैं, जो हमारे रोजे जो हमारी इबादत हैं, जो दिलों में खोट कपट और साथ जो गुनाहों की लाशें हैं, इससे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जो इतनी सस्ती है मताउल गुरूर, जन्नत में कहाँ मिलेगा? नमाजों और नेकियों से तो नहीं मिलनी जन्नत, लेकिन नमाजों और नेकियों की कोशिश पे मिलनी है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती होती हूँ ऐसे मौके पे बात समझ आने के लिए। आप देखिए कि एक बच्चा, उसका दिल करता है कि मैं कोई खिलौना खरीदूं, कोई कंप्यूटर गेम है या कुछ है। अब वो क्या करता है, माँ तो लेके नहीं दे रही, बाप नहीं देता, व्हाट सो एवर, फिर वो पैसे जमा करता है, हर रोज थोड़े थोड़े पैसे थोड़े थोड़े डालता है। फिर एक दिन क्या होता है, वो कोई बड़ा अच्छा काम करता है तो माँ कहती है लाओ क्या है तुम्हारे पास, जब खोल के देखते हैं ना तो 10 पाउंड भी नहीं जमा हुए, जबकि वो खिलौना जो है ना वो 50 पाउंड का है। माँ कहती है लाओ जो तुम्हारे पास है दो, बाकी 40 खुद से डाल के खिलौना ले देती। ये होगा कल मेरे और आपके साथ वल्लाह, और ये हो जाए तो सस्ते छुटे। मेरा तो कोई अमल ऐसा नहीं है कि मैं जन्नत में एक कोड़े के बराबर भी जगह खरीद सकूं। हदीस में आता है कि एक कोड़ा रखने, विप रखने के बराबर जगह जन्नत में, खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, सारी दुनिया मेरे पास हो मैं उसको सदके में दे दूं, और जो कुछ इसमें है दुनिया में ये सब मेरा हो और मैं कल दूं, कि अल्लाह ये दे के सिर्फ एक विप जगह रखने की जगह ले दे, तो अल्लाह कहेगा तुम्हारी मनी पूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है आपके अकाउंट्स, आपका अकाउंट खाली है। कभी आप कार्ड लगाएं, कहीं कार्ड यूज करें और पता चले कि बैंक में तो मनी कोई नहीं है, कल क़यामत के दिन यही होगा। लेकिन अल्लाह कदरदानी करेगा। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, पढ़ चुके हैं आप पांचवे पारे के आखिर में, वो कदरदान है। लेकिन हट हराम होके बने रहे, बैठे रहे। मैं आपको छोटी सी बात पूछती हूँ कि ये आज आठवें पारे पे आप पहुंच गए, जो आपने तर्जमा याद किया, और अगर उसका 50% भी आपके माइंड में, सच बताइए क्या ये आपकी कोशिशों का नतीजा है? कितने सफ़े हैं? 16 रुकू एक में डाल लें तो 7 पारों को 16 से ज़र्ब दे दीजिए, मिसाल देती हूँ। क्या दुनिया में इतने सफ़ों की कोई किताब आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हो जाती है? इंग्लिश की हो जाती है, उर्दू की हो जाती है, तो ये कैसे होती है? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। लोग कहते हैं हमने कभी लफ्जी तर्जमा याद नहीं किया, मैं कहती हूँ आपका मेरा काम भी नहीं है याद करना, हम कोशिश करते हैं याद, अल्लाह करवाता है। और जिंदगी मेरी रही ना रही, आप याद रखिए, मैं ना रही, आपका कुरान पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इस पूरे कुरान होने के बाद देखेंगे, जब आप इससे अगले कोर्स में आएंगे ना, हमारे शॉर्ट जो अगला एडवांस कोर्स होगा, ऐसे एकदम आपको लगेगा कि कुरान याद हो गया। यानी मैं आपको अपनी फीलिंग बताती हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने कुरान का तर्जुमा कब याद किया, एकदम मेरे सीने में आ गया। कोशिश तो करती थी जैसी आप करते हैं, मैंने तो कोई ग्रामर भी नहीं पढ़ी थी, सीधा साधा लफ्जी तर्जुमा फर्स्ट टाइम याद किया था। मुझे नहीं याद मैंने कब बैठ के इसका हक अदा करने के लिए दिया, लेकिन ऐसे लगता है कि अल्लाह जुबान पे डाल दे, खुद ही आ जाता। कोशिशों से, बार बार पढ़ने से, कोशिश तो जारी रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसका वो हक दिया होगा जो मुझे देना था, ये अल्लाह देता है। सूरत क़यामत में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अलैना जमहू व बयाना, इसको सीने में जमा कराना और इसको जुबान पे लाना ये हमारा काम है। बंदा कहाँ बोल सकता है, किसी के हाथ में नहीं है, इसके लिए बस अल्लाह पे डाल दें। जब उसको कह जो दिया कि अल्लाह तेरे सुपुर्द तेरे हवाले, मैं भी तेरी, मेरा काम भी तेरा, जो पढ़ाना है पढ़वा ले, जो बुलाना है बुला ले, जो याद कराना है करा दे। कई दफा आपको देखिए एक दफा की पढ़ी हुई आयत तर्जुमे की पूरे नंबर आ जाते हैं, कभी आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उस दिन के पारे में टेस्ट में एक दो गलतियां कराते हैं, ये कौन कराता है? अल्लाह। हत्ता के हदीस में आता है कि नमाज में भी जो बंदा भूलता है ना, तो ये ना कहे कि मैं भूल गया, ये कहे मैं भुला दिया गया, अल्लाह भुला देता है। मा ननसख मिन आयतिन अव नुंसिहा नाति बिखैरि मिन्हा, तो ये उसके हाथ में रिमोट है, ऊपर ऊपर रिमोट है, वो हिलाता है तो जुबान चलती है, वो हिलाता है तो कान सुन रहे हैं, वो हिलाता है तो हमारे हाथ लिख रहे हैं। एक सेकंड के भी सौवें हिस्से में वो कुन कह दे तो ये चलते हुए हाथ में ही रुक जाएंगे, बोलती भी जुबान गूंगी हो जाएगी। तो जो बंदा अल्लाह की इस ताकत को समझ जाए और अपनी बेबसी को समझे, अल्लाह उसकी कदर करेगा, वरना मैं और आप तो अपने अमलों पे नहीं जा सकते। हत्ता कि अल्लाह के नबी को किसी ने कहा कि आप भी नहीं अपने अमलों पे जाएंगे जन्नत में, कहा वल्लाही मैं भी नहीं जा सकता यहाँ तक कि मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ले। नबी की बातें सोचे। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत वो कोटेशन भेजी, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत पीछे सीन था, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे नबी वो थे कि जो रात को इतना खड़े होते थे क़याम में कि उनके पांव सूज जाते थे, सुना मैं ना। और आज उम्मत का हाल यह है कि वो इतना सोती है कि आंखें सूज जाती हैं, सो सो के सोए में, ये सोई भी उम्मत है इस वक्त, अब जाग रहे हैं तो थोड़ी सी आंखें खुल रही हैं। हकीकत है आज हमने वो हक पाया ही नहीं जो हमें अल्लाह ने देना था। जन्नत के दरवाजे पे खड़ा बंदा वहां अल्लाह ताला उसकी नेमत, उसकी कोशिशों की कदर कर रहा है, तो आप बताइए कि फिर मैं और आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर बैठे होते आज आप, क्या आप इस आयत की तफसीर सुनते? आज आप घर में बैठे होते, कल आके इसका तर्जुमा सुनाते? और कितनी महरूमी है कि आप तफसीर सुन रहे हैं और तर्जुमा आपकी जुबान पे नहीं आ रहा, कोशिश नहीं करते तर्जुमे की, बेबसी है ना। ये तो ऑनर है, सुन रहे हैं तो ऑनर है, लिख रहे हैं इस वक्त नोट्स ले रहे हैं तो ऑनर है, कल तर्जमा सुनाएंगे तो ऑनर है, अगले हफ्ते में इसका टेस्ट देंगे तो ऑनर है, इसके साइन, ये तो अल्लाह देता है आपको। कौन कहता है आपके नंबर, कौन कहता है आप पूरे लें, कौन कहता है? अल्लाह कहता है ये हम भी मां कुन तुम तामलून, तुम कोशिशें बस किया करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करते। दुनिया में शोहर बीवी में बाज दफा तलाक तक हो जाती है, दोनों नेक होते हैं, ये जाके यहाँ पे अल्लाह मिन गिलन खींच देगा कि दोनों ठीक हो। जैद और की बीवी थी जैनब, हम पढ़ेंगे सूरत अल अहज़ाब में इनका किस्सा। तलाक हो गई जिंदगी में, अल्लाह वहां जाके उनको सही कर देगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया में दिल पाक कर दे। यहाँ बैठे बैठे कहें कि मेरा दिल सबसे साफ, किसी के लिए नहीं मैंने सोचना बुरा, फिर आप देखिएगा कि कुरान कैसे जज्ब होगा आपके दिल में। अब आगे एक कॉन्वर्सेशन है, जिसको आज की जुबान में आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस कॉल है, सेटेलाइट के थ्रू होगी। अब नाम आप चाहे उसको विजा क्यू रख लें, पाइलटॉक रख लें, स्काइप रख लें, दुनिया में आज इसकी मिसालें मौजूद हैं। कल वाले लोगों के लिए तो ये मुश्किल था, आज मुश्किल नहीं है। ये आखिरी हिस्सा आज के सबक का, कि किस तरह से अल्लाह ताला कयामत के दिन एक ऐसी डायरेक्ट कॉल लोगों की मनवा देगा कि जन्नती और जहन्नमी आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे। थोड़ा सा बल्कि इसकी बेस बना दूं, फिर आप आयत को एंजॉय करेंगे। देखिए जन्नत जो है ना, ये सातों आसमानों से ऊपर है, अभी भी आपने इशारतन सुन लिया ना जर्नी ऑफ सोल में, और जहन्नम जो है ना, ये सातों जमीनों से नीचे है। ये बात वाजह है, जब क्यामत के बाद भी लोग जहन्नम में आएंगे, मैदाने मक्षर में दोनों को लाया जाएगा। वो जी या जहन्नम यौमैज़िन, 30वें पारे की सूरतों में पढ़ लें, जहन्नम भी लाई जाएगी। हदीस में आता है कि 70,000 नुकेले डाल के जहन्नम मैदाने मक्षर में लाई जाएगी। कैसे लाई जाएगी हमें नहीं पता, बस जो मैं दोनों बिल गई, ठीक है। यानी जन्नत करीब की जाएगी, यानी जन्नत और जहन्नम मैदाने मक्षर में तो आएंगी ये सारे मामले जो हो रहे हैं ना, लेकिन फिजिकली जन्नत जो है ना ये सातवें आसमान पे है और जहन्नम बिल्कुल नीचे है। ये जो हमने सोचा है ना कि बस एक पार्किंग लॉट में, कोई बात नहीं, राइट टर्न लेंगे तो जन्नत है, लेफ्ट टर्न लेंगे तो जहन्नम है, ये हमारी भूल है। कुछ लोगों ने दुनिया में यही समझा हुआ है, और देखना पहुंच जाना जन्नत में। ऐसे ही मौलवी डराते हैं, करो मर्जी की शादियां, करो मर्जी क्या, ये बड़े सख्त लोग हैं इसीलिए तुम जाते नहीं है। ये हालात, ये एक लेवल नहीं है जन्नत जहन्नम का के राइट और लेफ्ट, ये ऊपर और नीचे है। और नीचे जाना एक काम कर लें, ब्रेक से पाँव हटाएं तो सीधे नीचे, ख्वाहिशों की ब्रेक से नीचे, और ऊपर जाने के लिए वह नहन नफ्स अनिल हवा। तो जन्नत वाले ऊपर है, अब जन्नत में जन्नत ही है, जहन्नम ही जहन्नम में। अब कुछ अपने प्यारे साथी दोस्त अहबाब जन्नत में जन्नतियों के, जहन्नम में जहन्नमियों के। दुनिया में अमूमन क्या होता है कि हम अपने किसी प्यारे की कोई तकलीफ की खबर सुने तो दिल दुखता है ना, यहाँ बैठ के भी दिल दुखता है, ख्वाहिश होती है कि उनकी कुछ मदद कर दें। पहली बात ये नोट कर ले कि जो जन्नत में एक दफा चला गया, उसके बाद उसको कोई गम नहीं है, अल्लाह वो सारे इमोशंस निकाल देगा। कि अपने किसी प्यारे या अजीज या रिश्तेदार को जहन्नम में दे के जले, हाँ जन्नत में जाने से पहले होगा, मैदाने मक्षर के अंदर हमारे अंदर फीलिंग्स होंगी। युबस्सरून हम यबद्दू मुजरिमों को, और एक दूसरे को देखेंगे, कभी किसी से भागेंगे, कोई किसी की मदद करेगा। एक दफा आप जन्नत में चले गए तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह सब गम खींच देगा। लेकिन सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन जब हमारे आपके सामने आ रही है, इसको सुनिए और इस बात का यकीन रखें कि ये होगा।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون